हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया और अभीर सिंह राठौर आखिरकार एक हो गए थे। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं था। सब कुछ भुलाकर दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। जोया के साथ रिश्ता बनाने के बाद अभीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी मोहब्बत को अंजाम मिल चुका था। अभीर सिंह राठौर का इतने महीनों का इंतजार खत्म हो चुका था। अभीर ने अपनी जिंदगी में किसी भी लड़की को छूना तो दूर, इस नज़र से देखा तक नहीं था। लेकिन जब से उसने जोया को देखा था, उसे पाने की चाहत उसके दिल में जन्म ले चुकी थी, जो आज जाकर पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही जोया की आंख खुली, उसने अपनी बगल में अभीर सिंह राठौर को सोता हुआ देखा। उसने अपनी हालत देखी, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। जोया अभीर की बाहों में इस तरह सोई हुई थी कि उसे हल्की हल्की शर्म महसूस होने लगी। धीरे से वो वहां से उठी ताकि अभीर को पता ना चले कि वो उठ गई है। धीरे धीरे उठकर वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी होकर उसने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को याद करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी में कितने ही लड़के आए थे गए थे, कितने लोगों ने उसे दुख पहुंचाया था, उसकी रूह तक को जख्मी किया था। लेकिन आज अभीर सिंह राठौर के साथ रिश्ता बनाने के बाद उसे एक अलग तरह का एहसास, एक अलग तरह का सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत से रिश्ता बना हो, क्योंकि आज तक जितने भी रिश्ते उसके साथ बने थे वे सिर्फ उसके जिस्म के लिए या किसी न किसी चीज का बदला लेने के लिए बने थे। लेकिन आज उसके इस रिश्ते में सिर्फ प्यार था, वो प्यार जो अभीर सिंह राठौर की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। जोया के साथ पहली बार किसी ने प्यार से रिश्ता बनाया था। जोया के चेहरे पर एक अलग सा निखार आ गया था। अभीर की मोहब्बत ने जोया को एकदम से बदल दिया था। जोया आज खिलकर एकदम गुलाब के फूल की तरह हो गई थी। वो तो पहले भी बहुत खूबसूरत थी और अब अभीर के प्यार ने उसे और भी निखार दिया था। कितनी देर तक जोया शावर के नीचे खड़ी होकर अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को याद करती रही। तभी अचानक जोया के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो सोचने लगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी अरमान ठाकुर से। सुना है मेरी याद में तुम पागल मजनू बनकर घूम रहे हो ना, तो इंतजार करो, जोया आ रही है अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब लेने। और मैं वादा करती हूँ अरमान ठाकुर, मैं तुम्हें मौत तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये कहकर जोया के चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट भरी मुस्कराहट तैर गई। दूसरी ओर अरहम ठाकुर को 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ना तो उसे अक्रम दिखाई दिया था और ना ही रिया। अब उसे कुछ शक सा होने लगा था। उसने अपने आदमी को, जिसे उसने राठौर मेंशन में तैनात किया हुआ था, अंदर जाकर चेक करने के लिए कहा। आखिर 3-4 दिनों से ना तो मियाँ दिखाई दे रहा था ना ही बीवी। आखिर वे लोग कहाँ थे, क्योंकि ना तो वे कहीं घूमने फिरने जा रहे थे ना कहीं मौज मस्ती करने। जबकि जब से रिया प्रेग्नेंट हुई थी, अक्रम हर रोज उसे पार्क या गार्डन में टहलाने ले जाता था, लेकिन अब 3-4 दिन से वे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए अरहम के दिमाग में कुछ शंका सी होने लगी थी। इसलिए उसने अपने आदमी को, जिसे उसने अभीर सिंह राठौर के बॉडीगार्ड्स के बीच तैनात किया हुआ था, अंदर जाकर देखने के लिए कहा। उस समय अरहम के आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर किस बहाने से जाए, क्योंकि इस तरह से किसी भी गार्ड का बिना अभीर सिंह राठौर की इजाज़त के अंदर आना मना था। लेकिन उसे ये तो चेक करना ही था कि आखिर अक्रम और रिया कहाँ हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ना तो वे घर से बाहर निकले थे और ना ही घर के गार्डन में दिखाई दिए थे। ये बात उन्हें भी परेशान करने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो गार्ड मेन दरवाजे पर पहुंचा, रोहित, जो अभीर सिंह राठौर का पर्सनल असिस्टेंट था, उसने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने उसे धमका कर वापस भेज दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के दरवाजे तक आने की? जाओ यहां से, अगर किसी तरह का कोई जरूरी काम होगा तो हम लोग तुम्हें बुला लेंगे। रोहित ने उसे पूरी तरह से लटार दिया और फिर अभीर सिंह राठौर को मैसेज करके बताया कि अरहम का आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब अभीर सिंह राठौर को अच्छी तरह से पता था कि आगे अरहम क्या करने वाला है। अरहम सीधा अपनी माँ गजाला जी के पास पहुंचा और आंखों में आंसू लाकर बोला, अक्रम और रिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। प्लीज मॉम, आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से अभीर राठौर के मेंशन में जाइए और पता कीजिए कि अक्रम और रिया कहाँ हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वे जरूर जोया के पास गए होंगे और मैं नहीं चाहता कि वे चोरी छुपे वहां से जाएं। जैसे ही अक्रम और रिया की मुझे खबर मिलेगी, मैं उनका पीछा करके जोया तक पहुंच जाऊंगा। प्लीज आप एक बार जाकर मेरे कहने से उन्हें चेक कर लीजिए, अरहम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। गजाला जी अपने बेटे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती थीं और उन्हें अच्छी तरह से याद था कि उनके सौतेले बेटे अबीर सिंह राठौर ने उनकी कितनी बेइज्जती की थी। इसलिए वो वापस से अभीर सिंह राठौर के मेंशन में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो अपने बेटे की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती थी, इसलिए अपने सीने पर पत्थर रखकर उन्होंने अभीर राठौर के मेंशन में जाने का इरादा मजबूत कर लिया और अपने दिल पर पत्थर रखती हुई वे अभीर राठौर के घर पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने अभीर राठौर के घर में कदम रखा, वहां पर एक अजीब सी खामोशी का उन्हें एहसास हुआ। अरहम ठाकुर गजाला जी से बराबर फोन पर कनेक्ट था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अभीर सिंह राठौर के बॉडीगार्ड उसे घर के अंदर तो नहीं जाने देंगे, लेकिन वो अपनी माँ से फोन पर तो बात कर ही सकता था, इसलिए उसने अपनी माँ गजाला जी को अभीर सिंह राठौर के मेंशन में भेज दिया था। गजाला जी को मेंशन में जाकर कुछ खालीपन का एहसास हुआ। जैसे ही उसने एक नौकर से पूछा कि वो लड़की कहाँ है और उसके साथ जो लड़का था वो कहाँ है, एक नौकर ने गजाला जी से कहा, आप किन के बारे में बात कर रही हैं मैडम, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता है, 3 दिन पहले वो साहब मैडम के साथ कहीं चले गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं इस बात की खबर उन्होंने किसी को भी नहीं दी है, और फिर हम तो नौकर हैं, भला वे लोग हमें क्यों बताएंगे कि वे कहाँ जा रहे हैं, हमें भी बाद में ही पता चला जब वे घर में हमें नहीं मिले। उस नौकर की बात सुनकर गजाला जी के हाथ पैर सुन हो गए। वहीं दूसरी ओर अरहम जो लाइन पर लगा हुआ था उसने भी नौकर की बात सुन ली थी और गुस्से से उसने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कसकर भींच ली थी, क्योंकि इतनी कड़ी नजर के बावजूद अकरम और रिया भी जोया की तरह गायब हो चुके थे। लेकिन अरहम ठाकुर ये नहीं जानता था कि उसका इंतजार केवल कुछ ही पल के लिए है, बहुत जल्द उसकी मुलाकात जोया से होने वाली थी और यकीन मानो ये मुलाकात उसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं देने वाली थी।